ग्रंथ समता प्रकाश में एक चैप्टर है समदर्शन योग, उसका सब टाइटल है सत नाम की असलियत। इसमें ईश्वर के 70-75 नाम दिए हुए हैं और उनकी साथ में परिभाषा भी दी हुई है, अर्थात वो नाम क्यों है उसका, उसकी डिटेल भी साथ में है। तो उसमें से कुछ जो खास नाम है जो हम आम रूप से परिचित हैं उनका विवरण मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, उस पर विचार होगा। एक शब्द है निरंजन, ईश्वर के नाम निरंजन भी कहते हैं। उसके बारे में वाणी लिख रही है, नित प्रकाश ना व्यापे अंधकार, नाम निरंजन से करें संत पुकार। नित प्रकाश ना व्यापे अंधकार, नाम निरंजन से करें संत पुकार। निरंजन शब्द जो है ये हम जानते होंगे, हिंदी जो जानकार हैं, एक अंजन होता है, अंजन कहते हैं काजल को, काजल काला होता है ना, इसलिए वो अंधकार है। यहां कह रहे हैं कि नित प्रकाश का व्यापे अंधकार, उसका नाम निरंजन इसलिए रखा गया अर्थात जो वो अंधकार से दूर है, क्योंकि वो नित प्रकाश रूप है, उसमें अंधकार नहीं। तो ईश्वर में कैसा प्रकाश है, ईश्वर में सूर्य वाला प्रकाश नहीं है, ईश्वर में चेतन प्रकाश, चेतना है उसके अंदर। मेरे अंदर चेतना है तभी तो मैं बाहर का प्रकाश देख पा रहा हूं, चेतना ना हो तो सारा अंधकार। इसीलिए वहां प्रकाश से मतलब चेतना से है कि नित प्रकाश ना व्यापे अंधकार, नित्य चेतन रूप है इसलिए वहां अंधकार हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका नाम निरंजन है। एक शब्द आता है आलख, लख माने होता है देखना। तिसका आद अंत लखया ना जाई, आलख नाम सो पुरख धरा। तिसका आद अंत लखया ना जाई, आलख नाम सो पुरख धराई। उसका आलख नाम क्यों रखा गया, आलख मतलब हो गया जिसको देखा ना जा सके। कहते तिसका आद अंत लखया ना जाई, उसका आदि कहां से है और अंत कहां पर है ये मनुष्य देख ही नहीं सकता, वो अनंत है, इसीलिए उसका नाम आलख पड़ा, आलख नाम सो पुरख धरा। एक नाम परिचित है गोपाल, सर्व जिया की करे प्रतिपाल, नाम धरावे सो गोपाल। अब सर्व जिया की करे प्रतिपाल, सारे जीवों का वो पालन करता है इसीलिए उसका नाम गोपाल, अर्थात पालन करने वाले को गोपाल कहते हैं। हर चाहे पशु है पक्षी है मनुष्य है, सबको अपने बच्चे पालन करने की कला पता है, सिखाई किसी ने नहीं, प्राकृतिक रूप से वो कला जानते हैं अपने बच्चों का कैसे पालन किया जाता है। जैसे मान लिया एक बिल्ली है, अब जहां उसको बच्चे का खतरा होता है तो मुंह में बच्चे को दबाकर वो दूसरी जगह रख देती है, बच्चा उसका स्वयं रक्षा नहीं कर सकता तो मुंह से दबाकर बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचती। उसी प्रकार बंदर देखिए, आपने देखा होगा बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ सकता है तो इसीलिए बंदर उसको नहीं पकड़ता, उसका बच्चा ही उसको पकड़े रहता है और छलांग में लगा देता है बंदर बच्चे के साथ साथ। तो हर जीव के अंदर अपने बच्चे पालन करने की कला किसने दी है, उनकी तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई। बालक पैदा हुआ है और मां को पकड़कर वो छलांग लगा रहा है साथ में, इसका मतलब क्या हुआ कि पालन करता हमको दिखाई तो पड़ता है कि मैं हूं, सत्य यह है कि ईश्वर मेरा पालन करता है, मेरी सारी क्रियाएं ईश्वर के अधीन हैं, उसके अनुसार ही हो रही हैं, जैसा उसने इंस्टिंक्ट हमको दे दिया, जैसा उसने यह स्वभाव हमको दे दिया, इसीलिए इसका नाम गोपाल है जो हमारा पालन करता है। एक और नाम आता है आत्मा, कहते हैं सर्व तत्व को सर्जन हारा, आत्म नाम से करी पुकारा, सर्व तत्व को सृजन हारा आत्म नाम से करी पुकारा। देखिए सारे तत्व जो हम आध्यात्मिक तरीके से जानते हैं कि पूरी सृष्टि जो है पांच तत्व से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनमें से ही सारी सृष्टि बनी हुई। इस सृष्टि में ही फिर वो साइंस के हिसाब से भी तत्व आते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आयरन है, ये हम तत्व पढ़ते हैं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति जो है वो पांच तत्व से बनी है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसका सृजन करने वाला कौन है, इसको उत्पन्न करने वाला कौन है? कहते हैं आत्म नाम से करी पुकारा। तो आत्म वो है जिससे सारी सृष्टि, सारी प्रकृति उदय हो रही है। अब बताइए कि वो सारी सृष्टि का स्रोत है, वही जब सारी सृष्टि का स्रोत है तो मेरे शरीर का स्रोत नहीं है क्या? तो मेरे शरीर की उत्पत्ति का कारण वो आत्मा है, मेरा जीवन भी वही है, मेरा मेटेरियल भी वही है, क्योंकि वहीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हो रही है, इसीलिए उसका नाम है आत्म। तो वो मेरा निज स्वरूप है, मेरा वो जीवन का स्रोत है, वो सब कुछ उसी के अंदर है, इसीलिए आत्म साक्षात्कार के लिए मानव जन्म मिला है, गुरु इसीलिए मिला है कि मैं अपनी आत्मा को जानूं कि सारी सृष्टि मेरा क्या कर सकती है, मैं सारी सृष्टि का मालिक हो जाता। अभी तो एक घर का मालिक होना भी बड़ा मुश्किल काम है, एक शरीर का मालिक होना भी बड़ा मुश्किल काम, ये मेरे बस में नहीं रहता शरीर। और एक मेरी ही वो स्थिति है कि मेरी सृष्टि में सारी सृष्टि का मालिक बन जाता। इसीलिए इसका जो एक शब्द जो साधारण से सुनते हैं, लेकिन आत्म कहते किसको है, सर्व तत्व को सर्जन हारा आत्म नाम से करिए पुकार। एक और शब्द हम बार बार सुनते हैं, उसको प्रभु को दीनदयाल कहा जाता है। वाणी क्या कह रही है, उसकी क्या परिभाषा कर रही है, सर्व जिया का करे उद्धार दीनदयाल धर नाम पुकार। अब बताइए कि सारे जीवों का वो उद्धार करता है, इसलिए सारे सबके लिए वो दयालु कहा जाता है, दीन दयाल है। तो किससे उद्धार करता है, संसार में सारे दुखी हैं, सारे बेचैन, तो सारे दुखों से, सारी बेचैनी से जो परमानेंट मुझको मुक्त कर देता है, इसीलिए उसका नाम दीन दयाल है। जो रोगी होता है, जो परेशान होता है, जो दुखी होता है, जो बेचैन होता है, वो दीन ही तो है, उन दीनों पर वो दयालुता करता है। किस रूप में, कि उनको अपनी गोदी में ले आता है, मोक्ष प्रदान करता है, दुखों से परमानंद उनका छुटकारा कर देता है। यदि मैं ये बात समझ लूं कि संसार दुख रूप, इसलिए सारी वाणी, सारे सत्पुरुष आपको यही सिखाते हैं कि संसार में दुख ज्यादा है, सुख कम है, बेचैनी ज्यादा है, चैन कम है। तो बताइए हम क्या ढूंढते हैं, सुख को ढूंढते हैं, दुख से बचने की कोशिश करते हैं। जब दुख ज्यादा है संसार में तो वही तो आपको ज्यादा मिलेगा, इसलिए आप कुछ भी प्रयास कर लिए आपको संसार में कभी चैन मिल ही नहीं सकता। तो जिस दिन भी मेरी ये बात समझ में आ जाती है, उस दिन मेरे मन के अंदर, मेरी बुद्धि के अंदर संसार के प्रति वैराग्य पैदा हो जाता है, इसका राग टूट जाता है। इसीलिए वो दीनदयाल जो है वो मेरा इन दुखों से उद्धार करता है, अर्थात अपनी गोद में मुझे वापस बुला लेता है। आगे कहते हैं एक राम, ये भी बहुत राम का नाम सुनते हैं, देखिए वाणी क्या कह रही है, चार खानी में सम पर कासे राम नाम धर करे अरदास। तो राम का मतलब होता है जो हर जगह रमा हुआ, कोई जगह उससे खाली नहीं, इसलिए कहते हैं कि चार खानी में संपर्क से। ये चार खानी क्या होती है, चार तरह की सृष्टि पैदा होती है, या चार तरह से जीव पैदा होते हैं। सो वाणी में आता है अंडज, जेरज, उद्भिज और स्वेदज, ये चार तो अंडज क्या होता है, अंडे से जो जीव पैदा होते हैं वो अंडज हो गया। जेरस कहते हैं गर्भ से जो पैदा होते हैं वो जेरस हो गया। उद्भिज कहते हैं जो जमीन से अंकुरित होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं सारे जमीन से अंकुरित होते हैं, उनमें भी जीवन है। जैसे मेरे अंदर जीवन है ऐसे पौधों में भी जीवन है, इसीलिए वो उद्भिज की श्रेणी में आते हैं। और जो यायु पहले जो बीज से पैदा होते हैं, और चौथा क्या है स्वेदज अर्थात जो नमी से पैदा होते हैं। अब देखिए कि बरसात जब होती है तो कितने तरह के जीवाणु, कितने तरह के कीटाणु, कितने तरह के मच्छर, कितने तरह के जो है ये छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं, और वो खरबों कोई गिनती ही नहीं, ये कहां से पैदा हो, ये तो कहीं रह ही नहीं रहते। तो जहां जमीन को नमी मिली, मौसम में नमी आई, ये सारे पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए ये चार प्रकार की सृष्टि है। इसका मतलब क्या हुआ कि सृष्टि के कण कण में वो प्रभु विराजमान है, वहां से ये जीव जंतु पैदा हो रहे हैं। तो इसीलिए वो राम हर जगह रमा हुआ, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां राम ना। इसलिए कहते हैं राम नाम भज अंतर्यामी, रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। इसीलिए अंतर्यामी क्यों, क्योंकि उसका अनुभव मुझको अंदर होता है। संसार में जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहा हूं ये तो मेरी बेचैनी का स्रोत है, ये तो घाटे का सौदा है। सारी आयु लगा देता हूं तो अंत में क्या हाथ आती है, मौत मेरे हाथ आ जाती है, बुढ़ापा मेरे हाथ आ जाता है, लोग मेरे हाथ आ जाता है, निराशा मेरे हाथ आ जाती है। लेकिन अंतर्यामी राम जो रोम रोम में रम हुआ है, उसके लिए जो जिया उसकी समाधि लग जाती है। शरीर का बुढ़ापा है लेकिन उसकी समाधि लगी हुई, समाधि का मतलब उस राम में इतना मस्त है कि शरीर संसार का वो होश ही नहीं, उस समाधि में वो पूर्ण तृप्त है। तो ये राम का महत्व, इसलिए उसका राम नाम राम पड़ा। अब कहते हैं आगे एक नाम आता है पतित पावन। पतित पावन किसे कहते हैं, तीन ताप संकट निवारे पतित पावन का पतित पावन कर नाम पुकार। तीन ताप संकट निवारे पतित पावन कर नाम पुकारे, उसका नाम पतित पावन क्यों पड़ा, क्योंकि तीन ताप कौन से होते हैं, वो आधि व्याधि उपाधि। आधि जानते हैं आध्यात्मिक रोग को कहते हैं, आध्यात्मिक रोग का मतलब होता है जो मानसिक रोग होते हैं, मानसिक क्लेश होते हैं। हर मनुष्य आप देखिए कि मानसिक क्लेश से ग्रस्त, पांच विकार महा दुखदाई जले सकल संसार, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तार। तो पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो दुनिया की जितनी भी हमारी सुख प्राप्ति की इच्छाएं हैं वो सारी की सारी 100% इच्छाएं ये पांच विकार के अंतर्गत आती है। इसलिए हर इच्छा जो संसार में आप इंद्रिय भोगों द्वारा पूर्ण करते हो वो किसी ना किसी विकार को प्लस कर देती है, किसी ना किसी विकार को और बढ़ा देती है और गहरा कर देती है। इसीलिए आप जितनी माया कमाइए, जितनी माया इकट्ठी करिए, आपकी मानसिक परेशानी मानसिक क्लेश बढ़ जाएगा। सोचोगे आप यह कि बड़ी प्रगति कर रहा हूं मैं, दुनिया को दिखाते हो प्रगति, लेकिन आप अंदर से जानते हो कि कितनी बेचैनी मुझको उठानी पड़ रही है इस प्रगति को करने के लिए, क्योंकि मुझको पता नहीं है जितनी माया इकट्ठी करूंगा लोभ बढ़ जाएगा। जब लोभ विकार बढ़ रहा है तो और माया चाहिए, फिर आपको विकार आपका और गहरा हो जाएगा, फिर और माया चाहिए। आप मर जाओगे लेकिन माया आपको कभी नहीं संतुष्ट कर पाएगी। तो इसीलिए संसार की नकल करके जो संसार में प्रगति करते हैं ये अंधा रास्ता है, ये डूबने का रास्ता है, इसमें कभी आपको शांति चैन आनंद मिल ही नहीं सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि तीन ताप संकट निवारे पतित पावन कर नाम पुकार। एक आता है अल्लाह का नाम, बहुत दुनिया में अल्लाह का नाम जपा जाता है। तो अल्लाह का क्या कह रहे हैं, आप एक ना दूजा शरीक अल्लाह नाम धरे आप रमनी। जो सारी सृष्टि में रमा हुआ है, जैसे राम रमा हुआ है ऐसे अल्लाह भी रमा हुआ है। तो सारी सृष्टि में जो रमा हुआ है, कहते हैं कि आप एक ना दूजा शरीर, अल्लाह का मतलब होता है कि केवल वही है, जैसे आत्मा केवल वही है, ईश्वर केवल वही है। तो अब बताइए कि दूजा कोई है ही नहीं इसके अलावा, उसका उसको कहते हैं ईश्वर का वो नाम है अल्लाह, केवल वही। एक नाम आता है परवरदिगार, सर्व जिया को रिजक खिलाए, परवरदिगार राजिक कहलाए। रिजक कहते हैं जो खान पान होता है, जिससे शरीर का पालन होता है, अन्न होता है, फल होते हैं, ये सब रिजक है। सर्व जिया को रिजक खिलाए, इसीलिए वो परवरिश करने वाला अर्थात परवरदिगार है और राजिक है। रिजक देने वाले को राजिक कहते हैं, अन्न देने वाले को, भोजन देने वाले को राजिक कहा जाता है, इसलिए उसका नाम है परवरदिगार। तो अब सर्वज्ञ की परवरिश कैसे करता है आप देख लीजिए। एक छोटी सी मक्खी भी है, एक छोटा सा जीव जंतु भी है, वो अपना पेट भर लेता है, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। पशु हैं, पक्षी हैं, आप देखते हैं कि सब अपना परिवार का पालन करते हैं। आप कोई सेवा मत करिए, उनको खड़ा छोड़ दिए, वो अपना भोजन भी तलाश कर लेंगे, अपना परिवार भी पाल लेंगे। वो जैसे हम जीते हैं चिंता कर करके, वो उतनी चिंता नहीं करते, हमसे कम चिंता में वो अपना जीवन जी लेते। तो कौन पालन कर रहा है? एक पक्षी भी देखिए आप, चावल डालिए उसके आगे, चावल जैसी शक्ल के पत्थर डाल दिए, वो बीन लेगा उसमें से, पत्थर को छोड़ देगा, चावल सब खा लेगा। ये अकल किसने दी उनको? ये ईश्वर ही उनका पालन कर रहा है, इसलिए वो अकल किसी और की नहीं है, वो ईश्वर की ही अकल है, ईश्वर की ही देन है। इसीलिए उसका एक नाम जो है वो परवरदिगार है, कि वो सबको राजी करता, सबकी खुराक वो खिलाता है, सबका वो पालन करता है। एक होता है शब्द सुनते होंगे सनातन, जुग जुग आद सोही पर भी नाम सनातन धर के हो ची। जुग जुग आद सोही पर भी नाम सनातन धर के हो ची। कहते हैं कि सनातन क्यों कहते हैं, कि जब से इस सृष्टि बनी है, जब से इस सृष्टि का उदय हुआ है, युगों युगों के आदि से वही ही इस संसार में उपलब्ध है। तो उसके लिए उसका कहा गया उसको सनातन, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, सनातन। सनातन के नाम से ही क्या पड़ गया, सनातन धर्म अर्थात ईश्वर धर्म। धर्म का संबंध ईश्वर के साथ और किसी चीज के साथ नहीं। इसलिए जब ये जीव पूर्ण रूप से धर्म में स्थित होता है तो काय में स्थित होता है, ये राम में स्थित हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, ये अंतर्यामी परमेश्वर में स्थित हो जाता है। इसीलिए उसका एक नाम है ईश्वर का, ईश्वर का नाम है ये सनातन। तो हमेशा हमेशा के लिए जुग जुग आद सोही परवीन नाम सनातन धर के हो चीन। एक नाम हम काफी सुनते हैं परमेश्वर। अब देखिए, अतुल शक्ति नहीं परमान परमेश्वर नाम धरे भगवान। अतुल शक्ति नहीं प्रमाण, इतनी शक्ति है कि उसका प्रमाण कोई संसार में मिलता ही नहीं, उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। अतुल शक्ति नहीं परमान परमेश्वर नाम धरे भगवान, इसीलिए उसका नाम परमेश्वर धरा गया है, कि उसके अंदर अपार शक्ति है जिसका पैरेलल कोई संसार में मिलता ही नहीं। एक नाम आता है विष्णु। महाजी भी कहते थे, प्रेमी भारत में पहले एक देवता की पूजा हुआ करती थी। महाजी ने एक दिन कहा था, भारत में पहले केवल एक देवता की पूजा होती थी, वो थी विष्णु की उपासना। विष्णु के मंदिर होते थे, विष्णु के लोग उपासना करते थे। अब देखिए वाणी में उसका अर्थ आता है कि क्यों होती थी विष्णु की उपासना। सब देवों का आदि देव, सब देवों का आदि देव विष्णु नाम धरावे अभेव। अभेव क्या मतलब, जो अभय प्रदान करता है, जो निडरता प्रदान करता है। प्रभु भक्ति से निडरता आती ना। संत देखिए जंगलों में गुफाओं में बैठे रहते हैं, कहां डरे अंत में। महाजी भी बैठे रहते थे जंगलों में, शेर भी है वहां, चीते भी हैं, सारे जंगली जीव होते थे, मार्जिन शिव। तो कहते हैं कि सब देवों का आदि देव विष्णु नाम धराबे अभे। तो जो सब विष्णु का आदि देव, यहां कही यूं कही है, जहां से देवता की उपासना शुरू हुई तो आदि देव कौन है? विष्णु। विष्णु के बाद सारे देवी देवता बन गए, अनगिनत देवी देवता बन गए। ये हमारे बनाए हुए हैं, लेकिन जो प्रभु की तरफ से देवता देवता जो आया वो तो सब देवों का आदि देव विष्णु नाम धराबे अभे। एक और नाम आता है भगवंत, इसको भगवान भी कह देते हैं हम लोग। रिद्ध सिद्ध शकत जिसके हाथ, रिद्ध सिद्ध शकत जिसके हाथ नाम भगवंत धरे सोनाथ। तो भगवंत नाम क्यों पड़ा? कि रिद्धि सिद्धि की जो शक्तियां होती हैं ये प्रभु के पास है, इसलिए जो रिद्धि सिद्धि का दाता है उस ईश्वर को क्या कहते हैं हम? भगवान है, भगवंत है। इसीलिए सारी ये परिभाषाएं हैं, शास्त्रीय परिभाषाएं हैं, ये जगह जगह आपको अन्य जगह भी मिल जाती हैं, लेकिन महाराज जी ने एक ही वाणी में एक ही जगह ये सारी लिख दी। एक नाम हम सुनते हैं मुरारी, बहुत नाम फेमस है ईश्वर का मुरारी। अब मुरारी का अर्थ क्या होता है? जिसकी महिमा का नहीं शुमार, जिसकी महिमा का नहीं शुमार नाम मुरारी धरे करता है। इसकी महिमा का बखान जो हम कर ही नहीं सकते इस जवान से, इतनी महिमा है उसकी, इसलिए उसका नाम ये मुरारी पड़ा। एक नाम आता है प्रभु, अपने भगत की शोभा कीजिए भगत हेत प्रभु नाम लखीजिए। उसका नाम प्रभु क्यों पड़ा? जो अपने भगत की शोभा बढ़ाता है। देखिए प्रभु का जो भी भक्त होता है, चाहे साइलेंट हो, महाराज जी भी जंगलों में ही रह जाता, लेकिन उनके द्वारा वाणी आई, उनका नाम जगत में फैला और ये सैकड़ों हजारों वर्ष तक चलता रहेगा। किसी भी सत्पुरुष का नाम कभी मिटता नहीं है। मोहम्मद साहब का नाम मिट गया क्या? ईसा मसीह का नाम मिट गया क्या? राम का नाम क्या मिट गया क्या? कृष्ण का क्या मिट गया? तो अपने भक्तों की प्रभुता कौन बढ़ाता है? वो ईश्वर ही बढ़ाता है, इसलिए उसका एक नाम पड़ गया प्रभु। और अंतिम नाम जो है आनंद स्वरूप, उस प्रभु का एक नाम है आनंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप क्या परिभाषा है उसकी? द्वंद्व विकार का जान नहीं छेद, द्वंद्व विकार का जान नहीं छेद, आनंद स्वरूप कर गावे वेद। उसको वैदिक काल से लेकर आज तक आनंद स्वरूप क्यों कहा जाता है? कि वहां द्वंद्व विकार नहीं। जैसे हमारे पास क्या है? दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, जवानी है तो बुढ़ापा है, जन्म है तो मौत है, हर चीज द्वंद्व। और वहां ना जन्म है ना मौत है। एक बार ये जीव जब अंतर्यामी ईश्वर से मिल जाता है, उसके साथ एक हो जाता है, तो वो खुद आनंद स्वरूप हो जाता है। इसीलिए बाहर संसार में सुख है, लेकिन संसार द्वंद्व रूप है, इसलिए सुख के साथ दुख है। आप सुख प्राप्ति के लिए सारी जिंदगी दुख भोगते रहते हो और घाटे का सौदा है, क्योंकि दुख ज्यादा भोगते हो, सुख कम भोगते हो। इसीलिए प्रभु आनंद स्वरूप है, वो उसकी प्राप्ति अंदर होती है। इसलिए गुरु आपको अंदर ले जाने के लिए प्रेरित करता है कि अंदर जाओ। अंदर जाओगे कैसे? मन की सारी इच्छाएं आपको बाहर भगाती हैं, क्योंकि इंद्रियां बाहर है आपकी, और अंतर्यामी प्रभु का स्मरण, प्रभु का नाम जो है वो अंदर ले जाता है मन को। इसीलिए मनुष्य जन्म अंदर जाने के लिए मिला, प्रभु भजन के लिए मिला, इसीलिए वो प्रभु आनंद रूप है, ये ना भूले हम। वो आनंद मिल सकता है हमको, मेरे रोम रोम में रमा हुआ है, वो राम है, इसलिए मैं सब पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार स्मरण करूं और अपने जीवन को सफल करूं। ओम हम सत्य सर्वदा।